नमस्कार भारत, आज है 9 नवंबर दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। हिमाचल में आज विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए वोटिंग। भारतीय मूल के ब्रितानी मंत्री प्रीति पटेल ने दिया इस्तीफा। इसराइली नेताओं से अनधिकृत मुलाकात का था आरोप। दिल्ली के आसपास के इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। क्या है बचने के उपाय?
किसी भी चीज को मत जलाओ। कोई भी चीज जलाने से पहले सोचो कि ये मेरे को पॉल्यूशन तो नहीं करेगी।
और दुनिया जहान में आज चर्चा सऊदी अरब की सियासत की, जहां पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदला है।
करप्शन चार्जेस सिर्फ मुखौटा है, डीपर पावर स्ट्रगल है। पूरे वहां के ओलमा नाराज हैं क्राउन प्रिंस से, वो सब बहुत ही मशहूर लोग हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। कुल 337 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 62 मौजूदा विधायक हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। कांग्रेस मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। यहां बहुजन समाज पार्टी ने भी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कई रैलियां कर भाजपा के लिए वोट मांगे हैं। चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। ब्रिटेन की भारतीय मूल की मंत्री प्रीति पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते 7 दिनों में इस्तीफा देने वाली वो सरकार की दूसरी अहम मंत्री हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री प्रीति पटेल पर इसराइल में अपनी निजी यात्रा के दौरान इसराइली नेताओं के साथ अनाधिकारिक मुलाकातें करने के बाद से भारी दबाव था। अपने इस्तीफे में प्रीति पटेल ने कहा है कि भले ही उनकी नीयत साफ थी, लेकिन उनके काम पारदर्शिता के उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। प्रीति पटेल युगांडा के दौरे पर थीं, जब कल उन्हें प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने वापस लंदन तलब कर लिया। बीते सप्ताह ब्रितानी रक्षा मंत्री माइकल फेलॉन ने एक महिला के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था। स्पेन के विदेश मंत्री अल्फोंसे दास्तीस के स्पेन के संविधान में बदलाव के बाद कैटलोनिया को आज़ादी के लिए जनमत संग्रह की अनुमति मिलने के सुझाव पर कैटलोनिया के आज़ादी समर्थक नेताओं ने शक जाहिर किया है। यूरोपीय संसद में कैटलन नेता जोसेप मारिया टेरिकाब्रास ने बीबीसी से कहा है कि स्पेन की सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो जनमत संग्रह नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, ये सच नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि वो संविधान में स्वायत्तता के सिद्धांत को जगह देने वाले हैं, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए संभवतः ये एक मीठा मजाक है या बस कुछ लुभावने बोल हैं, क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन ये विश्वास करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्पेन की सरकार ने कैटलोनिया के आज़ादी का ऐलान करने के बाद यहाँ की सरकार को भंग कर दिया है और इस स्वायत्त क्षेत्र पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सीरिया में सरकारी सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने देश में इस्लामिक स्टेट के अंतिम इलाकों में से एक पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सीरिया की सेना लेबनान के शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और इराक के शिया मिलिशिया के लड़ाकों ने मिलकर इराक सीमा के नज़दीक स्थित अलबू कमाल शहर को तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आज़ाद करा लिया है। बीते कुछ महीनों में इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में बड़ा इलाका गंवाया है और अब यह समूह बेहद छोटे इलाके में सीमित रह गया है। अमरीकी राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन की प्रमुख का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमरीकी विदेश विभाग ने अपने शीर्ष 60% अधिकारियों को गंवा दिया है। एक लेख में बारबारा स्टीफेंसन ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इतनी तेजी से गंवाने से अमरीका की दुनिया के घटनाक्रमों को प्रभावित करने की क्षमता पर असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन में हवाई हमले कर रहे सऊदी नेतृत्व के गठबंधन से कहा है कि यमन में मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। गठबंधन ने सोमवार के बाद से सभी जमीनी, समुद्री और हवाई मार्गों को बंद कर दिया है। यह कदम शनिवार को हूती विद्रोहियों के सऊदी राजधानी रियाद पर मिसाइल दागने के बाद उठाया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में माना जा रहा है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं और 83 साल की उम्र में 7वीं पारी खेलने की तैयारी में हैं। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल भी चुनाव जीतकर पार्टी के भीतर और बाहर अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी प्रमुख अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनका प्रचार किया, तो वहीं वीरभद्र सिंह के लिए भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हिमाचल पहुंचे। आज ईवीएम मशीनों में यह दर्ज हो जाएगा कि मतदाता ने किस दल में अपना भरोसा जताया है। थोड़ी देर पहले मैंने शिमला में स्थानीय पत्रकार पंकज शर्मा से बात की और पूछा कि कैसी तैयारी है हिमाचल में चुनाव की और इस बार के चुनाव में क्या कुछ खास है।
देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आज 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें करीब 50 लाख मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार यहाँ पे वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा, जो देश का पहला राज्य है जिसमें मतदाता अपने वोट देख पाएंगे और उसको देखकर वो मतदान कर पाएंगे कि वो किसे मतदान कर रहे हैं। अगर हम दलों की बात करें तो करीब इस चुनाव में सभी अलग अलग दलों से करीब 337 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से करीब 112 आजाद उम्मीदवार हैं। और जैसे कि हमेशा महिलाओं की बात होती रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा दावेदारी मिलनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा दावेदारी नहीं मिली है। केवल 19 महिला प्रत्याशी ही इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है। और अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, अलग अलग जगहों पर जाने के लिए लोगों को काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 17,850 पुलिस जवान और होमगार्डों की तैनाती के साथ 65 केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगाया गया है।
पंकज, कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के बीच कांटे की टक्कर है, अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों ही दलों के पक्ष में क्या बातें हैं?
देखिए, अगर हम हिमाचल के, जिस तरह से अगर हम पूरी स्टेट को देखें, जैसे हमने 12 जिलों का दौरा भी किया था, जैसे कि आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रेम कुमार धूमल जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश का, तो जाहिर तौर पे दोनों के जो लोगों में एक गुडविल है वो बहुत ज़्यादा है। बीजेपी जो पहले इस चीज़ से बचती रही और अपना मुख्यमंत्री जो घोषित करने से वो बचती रही, लेकिन जब जनता के बीच में ये सवाल तेजी से पकड़ने लगा कि बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, तो बीजेपी ने राजगढ़ की रैली में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। लेकिन अगर इस चुनावी जंग में देखा जाए तो जैसे कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी से और वीरभद्र जी से भी बात हुई, तो कांग्रेस जो है अपना पक्ष ही रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने 5 सालों में लोगों को ज्यादा रोजगार दिया है, सड़कें पक्की की है, किसानों की हर समस्याओं का समाधान किया है और वो युवाओं को रोजगार देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो बेरोजगारी का उठाया है, खनन माफिया का उठाया है और महिला सुरक्षा को मुद्दा बना के उन्होंने जो नारा दिया है वो जनता मांगे हिसाब का नारा दिया था। और वहीं कांग्रेस ने अपनी खासियतों को गुनाते हुए जो अपना स्लोगन रखा है, उन्होंने लिखा है कि हम जवाब हम देंगे।
हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, जानकारी दे रहे थे स्थानीय पत्रकार पंकज शर्मा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के ब्रितानी मंत्री प्रीति पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसराइली नेताओं के साथ अनधिकृत मुलाकातों को लेकर वो निशाने पर थीं और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इसराइली नेताओं से उनकी मुलाकात के पीछे उनके इरादे बुरे नहीं थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये पारदर्शिता के उनके मानदंडों के अनुरूप नहीं था। पूरी जानकारी दे रहे हैं दिलनवाज पाशा।
45 वर्षीय प्रीति पटेल सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और उन्हें पार्टी में एक चमकते सितारे के तौर पर देखा जाता रहा है। वे सरकार में कई भूमिकाएं निभा चुकी हैं। जून 2016 में उन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया था, यानी ब्रिटेन की विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद का काम वही देख रही थी। वो यूरोपीय संघ की आलोचक रही हैं। कंजर्वेटिव सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन अगस्त में निजी पारिवारिक छुट्टियों पर इसराइल गई प्रीति पटेल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इसराइली नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में उन्होंने ब्रितानी दूतावास या ब्रितानी सरकार को जानकारी नहीं दी थी। प्रीति पटेल ने विवाद होने के बाद सोमवार को माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई और उन्हें अफ्रीका दौरा बीच में छोड़कर देश लौटना पड़ा। बुधवार को दिए अपने इस्तीफे में पटेल ने कहा है कि उनसे जिन उच्च मानकों की उम्मीद की जाती है उनके कार्य उसके अनुरूप नहीं रहे हैं। ब्रितानी विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने पटेल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि प्रीति पटेल मेरी लंबे समय से बहुत अच्छी दोस्त और सहकर्मी हैं। वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की फर्स्ट क्लास मंत्री थीं। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव था और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन क्या प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद टेरेसा मे की सरकार से संकट टल गया है? पूर्व कंजर्वेटिव सांसद और पत्रकार पेरिस मैथ्यू को ऐसा नहीं लगता। मैथ्यू कहते हैं, एक तरीके से अब ये मुद्दा सिर्फ प्रीति का नहीं है। उन्होंने जो किया है वो गलत था। ये कोई मामूली गलती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी गलती थी। किसी भी सामान्य परिस्थिति में उन्हें तो जाना ही था। अब सवाल ये है कि क्या टेररिज्म में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सख्त हैं? उन्हें अंततः मानना पड़ा कि प्रीति को जाना ही होगा। इस समय उन्हें पूरे कैबिनेट फेरबदल की जरूरत है। दरअसल टेररिज्म में की कैबिनेट से दो मंत्रियों को एक सप्ताह के अंदर इस्तीफा देना पड़ा है और अब उनकी सरकार पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग पिछले दो दिनों से खतरनाक प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया है और आंखों में जलन लोगों की आम शिकायत है। जानकारों का कहना है कि गाड़ियों की अत्यधिक संख्या, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और फसलों को जलाए जाने की वजह से दिल्ली धुम कोहरे की चादर में ढकी है और मुश्किल से सांस ले पा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो तीन दिन हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। लेकिन उपाय क्या हैं? ऐसे मौसम में लोग क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके? ये बता रही हैं सरोज सिंह।
दिल्ली पिछले दो दिनों से एयरलॉक की गिरफ्त में है। ये वो स्थिति होती है जब वायुमंडल में हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसी वजह से आपको हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देती है। पर्यावरण के जानकार कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मयूर विहार में एमिटी स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका मेहता कहती हैं,
देखिए हमारा मॉर्निंग एक्टिविटी में जो ग्रुप गेम्स हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, इंटर हाउस इंटर स्कूल इवेंट्स की प्रैक्टिस होती है, टीम गेम्स की प्रैक्टिस होती है विच इंक्लूड्स योर रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड गेम। तो वो चीज अब हमने लेटर इन द डे में डाल दिया। देयर इज अ जीरो पीरियड इन द मॉर्निंग बट दैट जीरो पीरियड हैज बीन शिफ्टेड टू द आफ्टरनून। नाउ
सुबह सवेरे टहलने जाने वालों ने अपने टहलने जाने का वक्त बदल दिया है। दिल्ली में रहने वाले मोहर सिंह भी उनमें से एक हैं।
दिक्कत होती है दौड़ने में, हार्ट बीट जल्दी बढ़ जाती है, पल्स वगैरह ना इसके अंदर फर्क पड़ता है। जब सुबह जाते हैं हम यहाँ से वॉकिंग करके तो कुल्ला वगैरह कोलगेट करते हैं, जब हम खकार करते हैं तो काला निकलता है।
दरअसल आपके आसपास जो दिखाई दे रहा है वो कोहरा है जो धुंध के साथ घुलकर हम सब के लिए जहर बन गया है। इसको स्मॉग कहते हैं। सेंटर फॉर साइंस से जुड़ी अनुमिता रॉय चौधरी का मानना है कि ये आपात स्थिति है।
बदरपुर पावर प्लांट को बंद किया गया है। दिल्ली में अभी आप डीजल जनरेटर सेट्स नहीं चला सकते। उसके साथ साथ पार्क फीस को चार गुना बढ़ाया गया है और जैसे ये पेटकोक फर्नेस ऑयल जो बहुत ही गंद वाली जो इंडस्ट्रियल फ्यूल है इनमें पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे कुछ तमाम चीजें हैं जो अभी इमीडिएटली वो उनको करना पड़ेगा ताकि जो ये मात्रा जो खराब हो रहा है इसको वो कुछ हद तक संभाल सके।
हवा में प्रदूषण का पता एयर क्वालिटी इंडेक्स से चलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के कई पैमाने होते हैं। इनमें से सबसे प्रचलित है वो है हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का पता लगाना। पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर यानी हवा में मौजूद छोटे कण। इन दिनों दोनों कणों की मात्रा हवा में तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। हवा में मौजूद यही कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर खून में घुल जाते हैं। इससे शरीर में कई तरह की बीमारी जैसे अस्थमा और सांसों की दिक्कत हो सकती है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक प्रदूषण से बचने के लिए हमें पांच बातों का ख्याल रखना चाहिए।
आप अपना लेवल पे देखो एज ए इंडिविजुअल कि आप पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कर सकते हो। घर के बाहर मिट्टी है पानी डाल दो, आप उसमें घास उगा दो। आपके घर में गमले हैं उनको देखो कि उसकी मिट्टी बाहर ना उड़े, नंबर वन। नंबर टू, मिट्टी को अंदर में आप मत चलो। आप गाड़ियों को चला रहे हो बिल्कुल मिट्टी के ऊपर से ले जा रहे हो और धूल ऊपर से चल रही है। किसी भी चीज को मत जलाओ। कोई भी चीज जलाने से पहले सोचो कि ये मेरे को पॉल्यूशन तो नहीं करेगी। तीसरा, कहीं भी जा रहे हो, खाना खाने जाना है, रेस्टोरेंट चूज करना है, वेबसाइट पे जाके देखो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन लेवल कम कहाँ है, वहां जाओ। सो बी गाइडेड बाय अ फोरकास्ट। फोर्थ, अगर आप एस्थमेटिक या हार्ट की बीमारी के पेशेंट हैं तो डॉक्टर से बात करो कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। पांचवा, प्रेग्नेंट लेडीज छोटे बच्चे या बड़े लोग वो ज्यादा ध्यान रखें।
कुछ डॉक्टर कहते हैं कि N95 और N99 मास्क का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर ये काफी महंगे होते हैं। सस्ते मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं होता। जानकारों का मानना है कि प्रदूषण अब पर्यावरण से जुड़ी समस्या ही नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जानते हैं दिलनवाज पाशा से। जी,
बेहाले दिल्ली, ये शीर्षक है दैनिक भास्कर का। जाहिर तौर से बात दिल्ली में प्रदूषण के कारण आए स्मॉग की हो रही है। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है और अखबार बता रहे हैं कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं और मैं और आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। हम सब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि दिल्ली में हवा कितनी खराब हो गई। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है बीते दिनों रियान इंटरनेशनल स्कूल में जो कत्ल का मामला हुआ था, प्रद्युम्न नाम के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। अब उसमें CBI ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है और तर्क दिया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग टालने और पेपर टालने के लिए इस 11वीं क्लास के छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या की थी। इससे पहले स्कूल के एक वाहन चालक को इस कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मैरीकॉम 5 स्वर्ण जीतने वाली एशिया की पहली मुक्केबाज बन गई हैं। अमर उजाला ने उनकी तिरंगे लहराते हुए तस्वीर छापी है और ये खबर कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है वो ये है, दिल्ली में पार्किंग फीस 4 गुना तक बढ़ा दी गई है। ऐसा जो है वाहनों की जो संख्या है उसके सड़कों पर कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के कदम पिछली बार भी उठाए गए थे और ऐसे कदमों पर भी सवाल उठते रहे हैं। टेक्सस में 26 लोगों की जिस व्यक्ति ने हत्या की थी, FBI उसके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकी है और FBI का कहना है कि हम इसका मॉडल नहीं बताएंगे ताकि बुरे लोग जो है तक ये जानकारी ना पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि जो फ़ोन में सुरक्षा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जांच एजेंसियां भी उसको पार नहीं कर पाती, और ऐसा इस मामले में आया है। और फ़ोन जो होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी देने का एक बहुत अहम स्रोत होता है, तो इस बार नहीं जानकारी निकाल पाई है FBI। और असम में घूस देकर नौकरी पाने के मामले में 15 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई जो है असम सरकार ने की है। इसके अलावा GST के बाद से कई चीज़ों पर महंगाई की बात कही जा रही है, लेकिन दैनिक जागरण ने आज खबर दी है कि अब 150 उत्पादों पर GST की दर कम हो सकती है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश दुनिया जहान का। सऊदी अरब में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि वो सऊदी अरब को एक आधुनिक देश बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कई उदारवादी कदम उठाने जा रहे हैं। दुनिया में उनके इस ऐलान का बड़ा ही पॉजिटिव संदेश गया था। पिछले दिनों भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी एक कमेटी ने 11 शहजादों समेत कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया। सरकार ने दावा किया कि यह कदम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए उठाया गया है। उसके बाद नेशनल गार्ड्स और नेवी के कमांडर को हटाया गया और फिर एक हेलीकॉप्टर हादसे में एक शहजादे की मौत हो गई। सऊदी अरब में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे क्या कोई सियासी मकसद भी छुपा हो सकता है? हमारे साथी वात्सल्य राय ने दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहां, अरब जगत का सबसे अहम देश सऊदी अरब, इस्लाम को मानने वालों के लिए सबसे पाक मुल्क, जिसके रेगिस्तान के नीचे दुनिया की 1/4 तेल संपदा दबी है। रूढ़िवादी सऊदी समाज औचक बदलाव का हामी नहीं है, पर अब बदलाव की बयार बहने लगी है। इसके संकेत 4 नवंबर को मिले जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एक होटल पर छापा पड़ा। सऊदी अरब में 2 बार भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद को सुनिए।
उन्होंने जब होटल खाली कर दिया रिट्स कार्ल्टन, तो कुछ लोगों को शुभा होने लगा था कि आज कुछ होगा। बिफोर एनीथिंग कुड हैपन उन्होंने 40 लोगों को अरेस्ट कर दिया।
हिरासत में लिए गए लोगों में से 11 शहजादे, 4 मंत्री और कई पूर्व मंत्री थे। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार रोधी कमेटी के कहने पर हुई। बेशुमार अधिकार रखने वाली इस कमेटी का गठन सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शनिवार यानी 4 नवंबर को ही किया था और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इसका चेयरमैन बनाया। तलमीज अहमद कहते हैं कि सऊदी अरब की सियासत में पैसे का लेन देन बुनियादी है।
हमको मालूम है कि हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किंगडम में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रिश्वतखोरी बहुत ही परवेजिव है। किताबें भी इसके बारे में लिखी गई हैं। तो कोई प्रिंस कहे कि भाई एंटी करप्शन का मैं शुरू कर रहा हूं और मैंने 40 लोगों को अरेस्ट कर दिया, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे।
इस मामले में जिस तेजी के साथ कार्रवाई की गई उसे लेकर भी अंदेशे और अटकलें शुरू हो गईं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ AK पाशा,
हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 3 या 4 प्रिंस और मिनिस्टर्स और 20 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है, दूसरे सोर्सेस से पता चलता है कि 150 से ज्यादा लोग उसमें शामिल हैं।
अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ बहाना है तो फिर बड़े लोगों की गिरफ्तारी की असल वजह क्या हो सकती है? सऊदी अरब की राजनीति पर नजर रखने वालों की माने तो ये ताज के पहले वारिस मोहम्मद बिन सलमान का सत्ता पर पूरा अधिकार हासिल करने का सोचा समझा और साहसिक तरीका है। 2 साल पहले शाह अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सत्ता संभाली। सऊदी शाही परिवार के आंतरिक समीकरणों को तलमीज अहमद अच्छी तरह से समझते हैं।
पिछले 2 सालों से जब से किंग सलमान गद्दी पर आए, वो अपने छोटे लड़के को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया।
लगातार उठते सवाल और गहराते रहस्य के बीच तेजी से बदलता राजनीतिक घटनाक्रम किसी मध्ययुगीन शासन के साजिशों पर आधारित ड्रामे का हिस्सा लगता है। अब इसकी पटकथा के सिरे अमरीका तक तलाशे जा रहे हैं। तलमीज अहमद,
ड्रामा है। 1 हफ्ते पहले ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर आए थे रियाद, और मुझे लगता है कि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट वो उनके सपोर्ट से हुआ है, और मुझे ये भी शुबा है कि शायद अमरीकी सोर्सेज ने भी कुछ इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दिया होगा कि कुछ आपके खिलाफ कोई लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये पूरा स्पेकुलेशन है, मेरे पास कोई हार्ड इंफॉर्मेशन नहीं है।
हालांकि इन अटकलों को डोनाल्ड ट्रंप के उन ट्वीट से बल मिला जिसमें उन्होंने शाह और शहजादा सलमान के कदमों का समर्थन किया। शनिवार को ही शाह सलमान ने नेशनल गार्ड्स के मंत्री शहजादा मितब बिन अब्दुल्ला और नेवी के कमांडर को भी हटा दिया। मितब पूर्व शाह अब्दुल्ला के बेटे हैं। तलमीज अहमद कहते हैं कि मितब को हटाए जाने के बाद क्राउन प्रिंस का रक्षा सुरक्षा और अर्थनीति पर एक छत्र वर्चस्व कायम हो गया है।
एक एरिया उनके कंट्रोल में नहीं था, वो है नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड वो किंगडम का बहुत ही पावरफुल फोर्स है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने इंतजार किया 2 साल तक, तो अब पूरे किंगडम की कंट्रोल इनके हाथों में आ गई है।
शाही खानदान में अघोषित वर्चस्व की लड़ाई पर चलती रहस्य की परत उस वक्त और गहरा गई जब रविवार देर शाम यमन से लगती सीमा पर आसिर प्रांत के डिप्टी गवर्नर शहजादा मंसूर बिन मुकरिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। तलमीज अहमद ये भी कहते हैं कि साल 1932 में शाह अब्दुल अजीज के सऊदी अरब की स्थापना करने के बाद से मुल्क में सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही सहज रहा है। खानदान की कहानी में साजिशों के सिरे पहली बार तलाशे जा रहे हैं।
किंग अब्दुल अजीज ने 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का प्रोनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने लड़कों से एक बात उनको समझाई, आपस में तुम कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। इस फैमिली में अपने पर्सनल एम्बिशन के वजह से
ताज का वारिस बनने के बाद सलमान ने एक रूढ़ीवादी देश में खुद को उदारवादी सुधारक के तौर पर पेश किया। उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए जिसमें महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना शामिल है। वहीं विश्लेषकों की राय है कि उन्होंने तजुर्बे की कमी की वजह से कई गलतियां की हैं। AK पाशा उनकी चुनौतियां गिनाते हैं।
तेल की कीमतें जो गिर गई हैं, उससे 2/3 इनकम सऊदी अरेबिया का कम हो गया है। उससे जो नुकसान सऊदी अरब को हुआ है उसके परिणाम पूरे सोसाइटी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, मिलिट्री पे नजर आ रहे हैं।
AK पाशा ये भी कहते हैं कि शहजादा सलमान के तमाम मनमाने फैसलों का शाही परिवार में काफी विरोध है और उसे दबाने के लिए शाह सलमान बेटे के कहे मुताबिक फैसले ले रहे हैं।
करप्शन चार्जेस सिर्फ मुखौटा है, डीपर पावर स्ट्रगल है। पूरे वहाँ के ओलमा नाराज हैं क्राउन प्रिंस से, वो सब बहुत ही मशहूर लोग हैं, उनके सपोर्टर्स थे मिडिल क्लास में, उनको भी अंदर डाल दिया गया है, जर्नलिस्ट को, जजेस को, आम जनता को, शिया को।
सऊदी अरब सियासत की ये नाटकीय कहानी आगे क्या मोड़ ले सकती है, इस सवाल पर तलमीज अहमद कहते हैं,
काफी रॉयल फैमिली के मेंबर्स बहुत ही इससे परेशान होंगे, लेकिन कोई इंतजाम ऐसा नहीं है उस देश में कि ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन हो सके।
लेकिन एके पाशा मानते हैं कि ये कहानी डेड एंड पर नहीं पहुंची है।
मौका मिलते ही ये सब बगावत उभर के आएगी शियाओं की या रॉयल फैमिली में ही। पहले ही एक हमला हुआ है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे।
यानी 85 साल से सऊदी अरब की सियासत पर काबिज खानदान में लिखी जा रही संघर्ष और साजिश की इस कहानी में कई अनदेखे और अनजाने मोड़ आ सकते हैं।
दुनिया जहां सुना रहे थे वात्सल्य राय। कैसी लगी आज की पेशकश हमें जरूर लिखिएगा। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल यानी 8 नवंबर को सानिया नेहवाल ने पीवी सिंधु को 21-17, 27-25 से मात दी। ये मुकाबला नागपुर में खेला गया था। वहीं पुरुष वर्ग में एचएस प्रणय ने किदाम्बी श्रीकांत को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। मुकाबले में प्रणय ने श्रीकांत को 21-15, 16-21 और 16-7 से मात दी। श्रीकांत और प्रणय के बीच इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में 4 मुकाबले हुए थे। इसमें श्रीकांत ने पिछले 3 में जीत दर्ज की थी और एक बार प्रणय जीते थे। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। न्यूजीलैंड के बाद अब भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ होगा। श्रीलंका बनाम भारत का पहला मुकाबला टेस्ट मुकाबला होगा जो 16 नवंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका के साथ टेस्ट मुकाबले के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर बात कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली।
जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो अपने आप चुन लिए गए हैं। रोहित शर्मा टेस्ट टीम में है, चेतेश्वर पुजारा हैं, विराट कोहली खुद हैं और राहुल तो मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स देख रहे हैं, वो शायद उनको टेस्ट मैच प्लेयर ही बनाना चाहते हैं। बेस्ट अवेलेबल बहुत स्ट्रांग टीम है। श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया इन लोगों ने और अब श्रीलंका यहाँ खेलने आई है। डेफिनेटली भारत डोमिनेट करेगा, सब उम्मीद रखते हैं।
16 नवंबर को होने वाला टेस्ट मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। और अब खबर रफ्तार की दुनिया से। रविवार को फॉर्मूला 1 में ब्राजील ग्रांड प्री मुकाबला खेला जाएगा जिसमें लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल एक बार फिर आमने सामने होंगे। खेल की दुनिया से इतना ही, नमस्कार।
भारतीय मूल के ब्रिटानी मंत्री प्रीति पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये खबर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, इसकी चर्चा हमने की थी। अगर इससे जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए, उनके प्रोफाइल के बारे में जानना हो तो आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आ सकते हैं। इसके साथ ही संजय लीला भंसाली ने पद्मावती फिल्म को लेकर हो रहे विरोध पर क्या सफाई दी है और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में क्या कुछ कहा है, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, अमेरिका ने क्यूबा के लिए नए यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं, ये सारी जानकारियाँ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर हासिल कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। कुल 337 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 62 मौजूदा विधायक हैं। ब्रिटेन की भारतीय मूल की मंत्री प्रीति पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। बीते 7 दिनों में इस्तीफा देने वाली वो दूसरी अहम मंत्री हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री प्रीति पटेल पर इसराइल में अपनी निजी यात्रा के दौरान इसराइली नेताओं के साथ अनाधिकारिक मुलाकातें करने के बाद से भारी दबाव था। सीरिया में सरकारी सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने देश में इस्लामिक स्टेट के अंतिम इलाकों में से एक पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमरीकी राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन की प्रमुख का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमरीकी विदेश विभाग ने अपने शीर्ष 60% अधिकारियों को गवा दिया है। अमरीका ने क्यूबा को लेकर नए यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं जिनके लागू होने के बाद से अमरीकी नागरिकों के लिए क्यूबा की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन में हवाई हमले कर रहे सऊदी नेतृत्व के गठबंधन से कहा है कि वह यमन में मानवीय सहायता पहुंचने दे। बीबीसी समाचार।
तो तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।